पार्थ के प्रोजेक्ट के चलते इशिका पिछले 2 महीनों से अभिमन्यु से पूरी तरह दूर थी। अभिमन्यु को समय न देने की वजह से अभिमन्यु उससे नाराज था। जब पार्थ का प्रोजेक्ट पूरा हो गया और इशिका ने उसे सौंप दिया तो वो अभिमन्यु से मिलने के लिए राजवंश एम्पायर आई थी। हालांकि प्रेग्नेंसी में वजन बढ़ने की वजह से इशिका थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर रही थी। उसने पार्थ के काम में खुद को इतना डुबो दिया था कि उसने खुद को ठीक से देखा तक नहीं था। अभिमन्यु के केबिन में इशिका उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जहां अभिमन्यु ने साफ कर दिया था कि वो इशिका से बहुत नाराज है और उसे मनाने के लिए इशिका को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इशिका ने गहरी सांस ली और बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, लेकिन आज तक मैंने किसी को मनाया नहीं है, मुझे ये सब करना नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे?
मदद तो मैं तुम्हारी पहले भी करना चाहता था, पर तुम्हें फुर्सत कहाँ थी मेरी बात पर ध्यान देने की? तब ध्यान नहीं दिया तो अब क्यों मदद करूँ? खुद करो जो करना है, अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा।
अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके दिमाग में वो पल आ गया जब वो आखिरी बार अभिमन्यु पर इतनी बुरी तरह चिल्लाई थी कि उस बात को लेकर अभिमन्यु अब तक नाराज था। कंपनी के पब्लिक होने के बाद इशिका ने अपना पूरा समय पार्थ के प्रोजेक्ट को देने का सोचा था। पार्टी को पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और इशिका ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया था। एक रात अभिमन्यु राजवंश एम्पायर से लगभग 1 बजे के करीब लौटा था। जब वो कमरे में आया तो इशिका वहां मौजूद नहीं थी। इतनी रात को इशिका कहाँ चली गई? कहीं मिसेस सिंघानिया के पास तो नहीं सो रही? काम के चलते बहुत लापरवाह हो रही है। मिस निवेदिता ने बताया था कि कल वो बिना डिनर किए ही सो गई थी, मुझे उसे समझाना होगा, अभिमन्यु ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा। इतनी रात को अभिमन्यु को राधिका को जगाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इशिका के चलते उसे ऐसा करना पड़ा। आधी रात को अभिमन्यु को अपने कमरे के सामने देखकर राधिका भी थोड़ी हैरान हुई। क्या हुआ अभिमन्यु, सब ठीक है ना? कहीं इशिका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? राधिका ने परेशान होकर पूछा। आप इशिका के बारे में क्यों पूछ रही हैं? वो आपके साथ नहीं सो रही है क्या? अभिमन्यु ने तुरंत पूछा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए थे।
नहीं अभिमन्यु, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से मैंने उसे ठीक से देखा तक नहीं है। बात करने के लिए गई थी तो हाउस हेल्पर ने बताया कि वो अपना ज्यादातर समय स्टडी रूम में बिताती है, राधिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, जरूर काम करते हुए वहीं सो गई होगी, मैं उससे बात करूंगा। आजकल उसे ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको इस तरह रात को जगाना नहीं चाहता था, पर इशिका के चक्कर में।
अभिमन्यु सफाई देते हुए शर्मिंदा हो रहा था, तभी राधिका ने उसे बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें इस तरह शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। बाकी वो बाहर कहीं नहीं गई है, घर में ही है।
जी थैंक्स, गुड नाइट,
अभिमन्यु ने जवाब दिया और तुरंत वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। राजवंश फिला के 6ठे फ्लोर पर स्टडी रूम बनाया गया था, जहां एक बड़ी लाइब्रेरी और काम करने के लिए ऑफिस सेटअप था। अभिमन्यु जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि स्टडी रूम की लाइट ऑन थी और इशिका काम में खोई हुई थी। उसे देखकर अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा उभर आया था, क्योंकि इशिका की शक्ल बता रही थी कि वो ठीक से आराम तक नहीं कर रही थी। अभिमन्यु तेज कदमों से इशिका के पास आया और उसके सामने रखी किताब को बंद करते हुए नाराजगी जताते हुए बोला, कभी नहीं सोचा था कि तुमसे सख्ती से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। तुम पागल को नहीं हो गई हो? पार्थ का प्रोजेक्ट अगर 2 महीने और देर से पूरा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर बच्चों की सेहत पर असर पड़ा, फिर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं अपने गुस्से को कैसे शांत करूंगा। इशिका पहले से ही थकी हुई थी और प्रेगनेंसी के कारण उसे चिड़चिड़ापन भी महसूस हो रहा था। इशिका जल्दी से कुर्सी से उठी और सिर हिलाकर बोली, तुम्हें अकेले बच्चों की परवाह नहीं है, वे मेरे भी बच्चे हैं। मैं देख रही हूँ, जब से तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चली है, तुम्हें मेरे होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी जल्दी बदल गए तुम अभिमन्यु, बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। इशिका का जवाब सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो जल्दी से बोला, ऐसा कुछ नहीं है इशिका, मुझे तुम्हारी भी परवाह है, तुम हेल्दी रहोगी तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही इशिका ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ मैं हेल्दी रही तो तुम्हारे बच्चे भी हेल्दी पैदा होंगे। घूम फिर कर बात वहीं आ गई ना अभिमन्यु, ठीक है मैं जानती हूँ कि काम के चक्कर में मैं हमेशा खुद का ध्यान नहीं रख पाती, पर तुम ये भी तो बोल सकते थे कि मुझे खुद का ध्यान रखना चाहिए। तुम मुझे गलत समझ रही हो इशिका, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद बताओ, जब हमारी जिंदगी में बच्चे नहीं थे तब क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं करता था? अभिमन्यु ने प्यार से समझाते हुए कहा। करते थे, लेकिन अब तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मुझे भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार है, पर तुम जरूरत से ज्यादा पजेसिव हो रहे हो, इशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। वो इशिका पर चिल्लाना नहीं चाहता था। उसने अपने दोनों हाथों से इशिका को पकड़ा और प्यार से धीमे लहजे में कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई एम रियली सॉरी। हो सकता है मैंने गुस्से में तुम पर चिल्ला दिया हो, लेकिन मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। चलो इस बात को छोड़ो, मुझे बताओ तुमने खाना खाया? तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो? दिन में काम करने का समय होता है, रात को सोना जरूरी है। अभिमन्यु अपने शब्दों का खास ख्याल रख रहा था। उसने एक बार भी बच्चों का जिक्र नहीं किया। वो जानता था कि अगर उसने फिर से बच्चों का नाम लिया तो इशिका फिर से गुस्सा हो जाएगी। इशिका ने नामे सिर हिला दिया। इशिका की इस लापरवाही पर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उसके सामने खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। ये गलत बात है, तुम्हें टाइम पर खाना खाना चाहिए। आज से तुम्हारी हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, खाने से लेकर काम तक का शेड्यूल मैं बना दूंगा, बस तुम्हें उसे फॉलो करना होगा, अभिमन्यु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
नहीं, मैं तुम पर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा काम करना जरूरी है और मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। अभिमन्यु मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने हमेशा से खुद का ध्यान रखा है। अगर कुछ कर सकते हो तो इतना करो कि जब तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इशिका ने काफी बेरुखी से जवाब दिया। अभिमन्यु ने एक नज़र इशिका की तरफ देखी, उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। ये वो इशिका नहीं थी जिसे वो हमेशा से जानता था, लेकिन वो ये भी समझता था कि प्रेगनेंसी के कारण इशिका के मूड स्विंग्स हमेशा पीक पर रहते थे। ऊपर से वो इतना काम कर रही थी कि ठीक से नींद ना लेने की वजह से उसका बर्ताव ऐसा हो गया था। इशिका, अभिमन्यु ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की, पर इशिका उसे अनसुना करके वहां से चली गई। अपने काम में इतना डूब गई थी कि उस बात को लेकर उसने अभिमन्यु से अब तक माफी नहीं मांगी थी। उस दिन के बाद से अभिमन्यु ने इशिका का ख्याल रखा, लेकिन दूर से। उसे बस पार्थ के प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार था। पुरानी बात याद आने पर इशिका को अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। उसने अपनी आंखें अभी भी बंद कर रखी थी और वो अभिमन्यु को पकड़कर बैठी थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उसके सामने ताली बजाते हुए बोला, हाँ तो कोई कह रहा था कि उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। इस तरह पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा मिसेज राजवंश, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी तो तुम्हारा गुस्सा झेलने की कोशिश की थी, न जाने क्या क्या नहीं सुना था।
इशिका ने अपनी आंखें खोली और लाचार होकर बोली, तुम लड़के हो, तुम कभी नहीं समझ सकते कि प्रेगनेंसी में कितने बदलाव आते हैं। अच्छा बहाना है पीछा छुड़ाने का। किसी ने मुझसे कहा था कि बच्चों की बात बीच में मत लाओ, तो हमारे झगड़े में भी बच्चों और प्रेगनेंसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। इतने दिनों में तुमने कभी पार्थ से चिल्लाकर बात नहीं की। क्या मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट के चलते तुम आधे से ज्यादा समय उससे कॉल पर कनेक्ट रहती थी, अभिमन्यु ने इशिका को घूरते हुए कहा। तो तुम्हें इस वजह से जलन हो रही है कि मैं तुमसे ज्यादा पार्थ से कनेक्ट रही हूँ? वो सब प्रोफेशनल था। चलो अब गुस्सा छोड़ो और मुझे एक अच्छा सा हक दो, इशिका अपनी जगह से उठते हुए बाहें फैलाकर बोली। लेकिन अभिमन्यु अपने जगह पर बिना भाव के सख्त बैठा रहा। लगभग 2 मिनट तक इशिका ने अभिमन्यु के आने का इंतजार किया। जब वो नहीं उठा तो इशिका ने अपने हाथ सीधे किए और मुंह बनाकर बोली, इसका मतलब तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हो? बिल्कुल नहीं, अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। अचानक इशिका को कुछ सूझा, वो धीरे धीरे अभिमन्यु की तरफ बढ़ी और अचानक उसकी गोद में बैठ गई। अभिमन्यु अभी भी बिना किसी भाव के उसकी हरकतों को देख रहा था। वो इशिका को अच्छे से समझता था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी को मनाने के लिए ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करे। अभिमन्यु को मन ही मन इशिका की हरकतों पर हंसी आ रही थी, पर उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। इशिका ने अभिमन्यु के गले में अपनी बाहें डाली और उसकी नाक पर अपनी नाक रखते हुए बोली, क्या अभी भी नाराज हो? अभिमन्यु ने भौहें उचकाकर हामी भरी। इशिका ने आंखें घुमाई और अचानक अभिमन्यु के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसे बहुत अग्रेसिवली किस कर रही थी। अकेला अभिमन्यु ही नहीं, वो भी उसे बहुत मिस कर रही थी। पहले अभिमन्यु शांत रहा, लेकिन फिर वो भी इशिका के किस का जवाब देने लगा। उसके हाथ इशिका की पीठ पर घूम रहे थे। अभिमन्यु ने बीच में किस को बीच में तोड़कर हल्का हांफते हुए कहा, मनाने का बहुत बुरा तरीका निकाला है मिसेज राजवंश, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अपनी बात खत्म करते ही अभिमन्यु ने इशिका की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे इंटेंसिटी से किस कर रहा था। इशिका भी उन पलों में उसके साथ बहने लगी थी। अचानक अभिमन्यु ने इशिका को अपनी बाहों में उठाया और केबिन में बने प्राइवेट रूम के अंदर ले गया। कमरे में आते ही अभिमन्यु ने अपना ब्लेजर उतारकर फेंक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए इशिका के करीब बढ़ने लगा। इशिका के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। वो अभिमन्यु के करीब आना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण बढ़े पेट की वजह से वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही थी। जैसे ही अभिमन्यु उसके पास आया, इशिका ने नजरें झुकाकर कहा, रहने दो ना अभिमन्यु, मुझे अजीब लगेगा, मेरा वजन, इशिका हिचकिचाते हुए बोल रही थी। अभिमन्यु ने उसके होंठों पर अपना हाथ रखकर कहा, श, पृथ्वी को भी बेवजह डांट दिया, हम तुम्हें यहाँ देखकर सरप्राइज हो गए थे। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये किसने डाल दिया कि अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया तो तुम मुझे अच्छी नहीं लगोगी। मैंने कहा था ना कि हम बूढ़े होने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, तुम कब से लुक्स को लेकर इतनी इनसिक्योर होने लगी? तुम्हारे आसपास तो अच्छी अच्छी लड़कियां घूमती होंगी, इशिका के मुंह से अचानक निकल पड़ा। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उन सबको जाकर अप्रोच करता हूँ? तुम्हारे आने से पहले तक मैं सिंगल था। तुम मेरी वाइफ हो, वो चाहे कितनी भी अच्छी, मेंटेन या खूबसूरत क्यों ना हो, पर कोई मिसेज अभिमन्यु राजवंश नहीं बन सकती, अभिमन्यु ने प्यार से इशिका को समझाया। इशिका उसकी बात पर मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। अब इशिका ने अभिमन्यु को नहीं रोका। पिछले 2 महीनों में उनके बीच जो दूरियां और नाराजगी आई थी वो उस पल में खत्म हो गई थी। कर पलट। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में मिलते हैं। बड़े धमाके के लिए तैयार रहें। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। कहानी के बस 2 या 3 चैप्टर बचे हैं।